This is an ABP Life podcast.
नेपाल की राजधानी काठमांडू में आज सुबह एक प्लेन क्रैश हुआ है। प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 की मौत हो गई। घायल पायलट, जिनका नाम कैप्टन एम शाक्य है, वो गंभीर हालत में हॉस्पिटल पहुंचे हैं। प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा और हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सौर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ मेंबर्स थे, जिसका प्लेन क्रैश हुआ सौर्य एयरलाइंस का ही, जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर्स थे। कहा जा रहा है कि ये 21 साल पुराना प्लेन है जिसको मरम्मत कर टेस्टिंग के लिए ले जाया जा रहा था। प्लेन में मौजूद लोग कंपनी के टेस्टिंग स्टाफ थे और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर रिपोर्ट्स की माने तो नेपाल में पिछले 14 साल में 12 प्लेन क्रैश हुए हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज हर साल एक प्लेन क्रैश नेपाल में हुआ है। ऐसा क्यों होता है, क्या है इसकी वजह, समझने की आज हम कोशिश करेंगे एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। यह FII, जो हाँ, हमारे साथ में आज एक खास गेस्ट जुड़ने जा रहे हैं, एविएशन इंडस्ट्री की अच्छी समझ रखने वाले, हमारे साथ एविएशन इंडस्ट्री से ही जुड़े एक शख्स, देवेश अग्रवाल जी एविएशन एक्सपर्ट हैं हमारे साथ में। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट सर।
थैंक यू जी, धन्यवाद
जी। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगी वो यही कि नेपाल का जो आज हादसा हुआ है, इसकी क्या वजह अभी तक सामने आई है, क्या वजह आप देखते हैं कि ये हादसा कैसे हुआ कि जस्ट टेक ऑफ कर रहा था एंड देन सभी ने वो वीडियो देखा है किस तरह से प्लेन जो है वो रोल होकर एकदम से क्रैश हो जाता है, आप इसे कैसे देख रहे हैं, क्या हुआ होगा?
देखिए जी, एक चीज मैं बताता हूँ, कोई भी एविएशन हादसे में स्पेकुलेशन बतेरा बहुत डेंजरस होता है
जी।
तो कारण जब तक कोई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट नहीं आएगी उसका कोई, हम लोग सिर्फ लिटरली जैसे बोलते हैं ना, पार्डन द पन, हम लोग हवा में बात कर रहे हैं। तो और यू नो इट इज अ लिटिल डिसरिस्पेक्टफुल, जिनकी जान गई है उस पे यू नो ऐसे स्पेकुलेट करना, सॉरी मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है जी, तो कारण अभी पता नहीं है। जो आपने कहा, हाँ जी, 21 साल पुराना प्लेन था, इट इज मेड बाय द मॉडल जो है CRJ-200 है
जी।
जो बॉम्बार्डियर कॉर्पोरेशन है कनाडा का, उनसे वो बनाते हैं इस जहाज को, और इसके ज्यादा बड़ा वर्जन आता है CRJ-700 और CRJ-900। और CRJ-200 डेल्टा एयरलाइंस काफी इस्तेमाल करता है, मतलब जो उनके कम्यूटर एयरलाइन होते हैं, जो सब्सिडरीज होते हैं, वो यूज करते हैं अमेरिका में। सो ऐसा नहीं है कि ये हवाई जहाज कोई, मतलब इट इज अ वेल, काफी 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 यूज हुआ हुआ जहाज है। जो आप कह रहे थे कि काठमांडू से पोखरा जा रहा था मेंटेनेंस के लिए, और उसमें बेसिकली 2 क्रू मेंबर थे और 17
ट्रेनिंग
मेंटेनेंस स्टाफ थे। सुना है कि उसमें एक यमेनी भी एक पैसेंजर था जो मेंटेनेंस क्रू में था। सो उतना ही अभी का पता है। जैसे प्लेन लुढ़का है, पूरा राइट बैंक अगर आप वीडियो देखिए तो सडनली राइट विंग बहुत डिप हो गया और सीधा प्लेन एक 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 एंगल होता है करीब, समझ लीजिए करीब 40 डिग्री। तो अगर प्लेन लेवल हो तो अगर 40 डिग्री ऐसे टिल्ट हो जाए, उसके बाद में वो सीधा नहीं उड़ पाता है, चढ़ नहीं पाता है। और जब एक बार बहुत ज्यादा टिल्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा घूम जाता है, फिर तो जमीन में जाना ऑलमोस्ट निश्चित है। आप वीडियो देखें, जो एक वीडियो है जहां कतर एयरवेज का एक हवाई जहाज के, मतलब यू नो टेल के यहां से लिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि आखिरी में पायलट ने थोड़ा सा प्लेन को सीधा करने की कोशिश की, थोड़ा सा प्लेन सीधा हुआ पर फिर से आई थिंक लुढ़क गया। अब क्या है, क्या कारण है, वो जब तक कोई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो नेपाल के जो सिविल एविएशन अथॉरिटी हैं, जब तक वो कुछ रिलीज नहीं करेंगे, वो उसका कोई फायदा नहीं है। अब देखिए जो येटी एयरलाइंस का जो क्रैश हुआ था करीब 1.5 साल पहले, अब उसमें क्या हुआ, गलती से पायलट ने पावर बढ़ाने के जगह वो प्रोपेलर को फेदर कर दिया। तो मतलब क्या होता है कि अपने जैसे पंखा होता है, अल्टीमेटली प्रोपेलर अपने सीलिंग फैन के ही जैसा है, पर खाली उसमें जो ब्लेड होता है वो एक एंगल से चलता है, और अगर मेरे को ज्यादा पावर चाहिए इंजन से, तो मैं वो ब्लेड को थोड़ा और घुमा देता हूँ ताकि और हवा निकले, और अगर मेरे को कम करना है मैं ब्लेड को सीधा कर देता हूँ। अब वो गलती से लीवर दबा दिया, ब्लेड सीधा हो गया, ऑब्वियसली कोई हवा नहीं चलेगा उसमें, पंखा चाहे कितना भी घूम ले, जो प्रोपेलर है जो इंजन है वो घूमे जा रहा है, पर ब्लेड अगर सीधा है हवा पर तो हवा पीछे कोई आएगा नहीं ना, वो तो खाली हवा को काटेगा। तो ऐसे चीजें आई मीन होती हैं, पायलट एरर भी होता है, पर तेरे कारण होते हैं। अब इसका
और
जब तक
अभी
कोई
इस केस में क्या हुआ है, ये तो तभी आपके हिसाब से जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना अभी सही नहीं होगा कि आखिर क्या हो सकता है।
हाँ जी, और ऐसे नॉर्मली इन जो जहाज हैं, जो CRJ-200 है, इनमें वो जो अपने ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, असली में जानबूझ के ये रंग का टी शर्ट आज पहना है, क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स होते हैं ये ऐसे ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर के होते हैं।
And then why are they called as black box?
Because they used to record all the data, you know, and so they were like the black box. That's a terminology used across industry. So, you know, जब वो बोलते हैं, आप जैसे देखिए सॉफ्टवेयर में भी वर्ड ब्लैक बॉक्स बहुत यूज होता है।
और वो होते हैं actually orangish color.
They are orange in color, खास करके क्योंकि they should be easily spottable, कहीं से दूर से भी, क्योंकि you know bright रंग है, तो अगर आप देखिए मेरा t-shirt बहुत ब्राइट है तो वो दूर से भी दिखेगा,
इजीली रिकॉग्नाइजेबल।
हाँ जी, इट इज सो। दीज आर देयर नॉर्मली देयर आर टू ब्लैक बॉक्सेस, एक को बोलते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर,
ओके,
दैट रिकॉर्ड्स ऑल जो पैरामीटर, सारे जो पैरामीटर्स होते हैं हवाई जहाज के, इंजन, टेम्परेचर, विंग का एंगल, एलिवेटर मूवमेंट, कैसे चढ़ रहा है, कैसे उतर रहा है, कैसे लुढ़क रहा है, कैसे ये ट्रैवल, सब उसमें सारे, मेरे को याद नहीं है कि CRJ-200 में कितने पैरामीटर रिकॉर्ड होते हैं, पर कई पैरामीटर रिकॉर्ड होते हैं। जो मॉडर्न जहाज हैं उनमें 200, 300, 400, 500 पैरामीटर भी रिकॉर्ड होते हैं हर कॉन्स्टेंटली। और दूसरा है जो बोलते हैं CVR, तो एक तो होता है FDR जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, और एक होता है CVR विच इज कॉल्ड द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। नॉर्मली कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो होता है वो 30 सेकेंड के लूप पे चलता है, सो ऑब्वियसली ये अगर ये एक्सीडेंट तुरंत टेक ऑफ पे हुआ है, सो ऑब्वियसली ये इसमें काफी इंफॉर्मेशन रहेगा वॉइस रिकॉर्डर पे भी कि पायलट्स क्या बातचीत कर रहे थे, क्या हुआ है, कोई 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 आवाज आई, यू नो कुछ कोई चीज टूट गई। सो बतेरे तरीके होते हैं इन्वेस्टिगेटर्स को, यू नो
ये सब प्लेन में ही मौजूद होता है, बिकॉज अ पर्सन हु डजंट नो कि क्या कुछ होता है, ये ब्लैक बॉक्स कहाँ होता है या ये वॉइस रिकॉर्डर्स कहाँ होते हैं। प्लेन क्रैश होता है, हम तो आमतौर पर जब टेलीविजन पर देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, सब धुआं धुआं हो गया, एवरीथिंग इज जस्ट जस्ट बिकम्स ऐश। सो ये ब्लैक बॉक्स और रिकॉर्डर्स क्या कैसे सेफ रहते हैं?
दे ये इनका खास कंस्ट्रक्शन होता है, दे आर मेड आउट ऑफ वेरी हेवी गेज मेटल। ऐसे होता है कि ये जो ब्लैक बॉक्स होते हैं बहुत मजबूत बनाए जाते हैं, दे आर डिजाइन टू बी वाटर प्रूफ, दे आर डिजाइन टू बी फायर प्रूफ, यू नो कि काफी देर आग में भी रह सकते हैं और काफी तापमान सह सकते हैं, और अंदर उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको खास करके डिजाइन किया जाता है, ऐसे ही बनाया जाता है ताकि हादसे में, यू नो चाहे मार लगे, चाहे आग लगे, चाहे पानी लगे। अगर आपको याद, काफी साल पहले एयर फ्रांस 447 अटलांटिक ओशन में क्रैश हुआ था
जी,
और उस वो हवाई जहाज मिला करीब 2-2.5 साल जीने के बाद, उस वक्त भी उन्होंने ब्लैक बॉक्सेस निकाले, एंड ब्लैक बॉक्सेस में वाटर, पानी नहीं गया था 2 साल के बाद में भी, और इतनी गहराई पे जहाँ पानी का इतना प्रेशर होता है, ब्लैक बॉक्स से उनको पता लगा कि क्या गलती हुई थी पायलट से और क्यों हवाई जहाज का हादसा हुआ था। सो इतने भी इंफॉर्मेशन आ जाएगा, ऐसे नहीं है कि थोड़ी देर, थोड़े दिन, थोड़े से, थोड़ा सा हम लोगों को शांति रखना पड़ेगा, सो वी हैव टू कीप एंड वी विल गेट द आंसर्स।
एग्जैक्टली, बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सवाल पर, क्योंकि जहां मैं मीडिया रिपोर्ट्स देख रही थी, आप चूंकि इस इंडस्ट्री से काफी जुड़े हैं, बींग एन एक्सपर्ट, आप हमें बेहतर बता सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं वेदर दीज रिपोर्ट्स आर राइट और रॉन्ग। जहां मैं मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रही थी तो नेपाल के बारे में कहा जा रहा था कि पिछले 14 सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखें, फ्रॉम 2010 टिल नाउ, हर साल ऑन एन एवरेज एक एक्सीडेंट होता है, एक प्लेन क्रैश होता है, और अभी तक में पिछले 14 सालों में 12 प्लेन क्रैशेस नेपाल में हो चुके हैं। इसके कारण की तरफ बढ़ना चाहेंगे, क्या कारण देखे जाते हैं कि नेपाल में इतने ज्यादा हादसे?
नेपाल का जो पहले जो है, एक तो ज्योग्राफी जो है वो थोड़ा सा अनोखा है, माउंटेन किंगडम है, बहुत पहाड़ हैं,
जी
और नेपाल में पर्यटन काफी होता है, तो उनके पास मेगा एयरपोर्ट्स के लिए जगह नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में कौन इतना बड़ा एयरपोर्ट, कहाँ आपको इतनी जमीन बिल्कुल फ्लैट कहाँ मिलेगी पहाड़ी इलाके में। अगर आप देखिए, चाहे इंडिया भी देखिए, आप देहरादून, ऋषिकेश ऐसे सब एरिया देखिए, लद्दाख देखिए, यू हैव बहुत छोटे छोटे एयरपोर्ट होते हैं, क्योंकि जमीन ही नहीं है ना, और सब जगह पहाड़ होते हैं। तो इन ज्यादातर क्या होता है, जो पहाड़ी इलाका, एक और चीज होता है, पहाड़ी इलाका में जो मौसम होता है वो बहुत अचानक से बदली हो सकता है। अगर आप सडनली आप देखोगे कि भैया धूप है सब है, और 15-20 मिनट बाद में सडनली पूरा बादल छा गया है, बारिश पड़ रही है, ये पहाड़ी इलाकों का वो मौसम वैसे ही है उस पहाड़ी इलाकों में। और नेपाल बेसिकली एक पहाड़ी
रीजन है
कंट्री है।
पूरा।
हाँ जी। सो एक तो वो, सो क्योंकि इनके जो एयरपोर्ट्स होते हो, एक तो वेदर इज वर्किंग वेरी मच अगेंस्ट द नेपाल एज अ कंट्री इन व्हेन इट कम्स टू एविएशन। फिर और बड़े प्लेन्स के भी एक्सीडेंट्स हुए हैं, क्योंकि क्या होता है, अभी पायलट कभी बादल में घुस जाता है, फिर सडनली कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ है क्या नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट्स से उनको इट्स कॉल्ड सिचुएशनल अवेयरनेस एंड स्पेशियल अवेयरनेस। तो कभी कभी होता है पायलट पूरा कंफ्यूज हो जाता है, एंड देर हैव बीन केसेस वेयर पायलट हैज लिटरली फ्लोन द एयरक्राफ्ट राइट इन टू अ माउंटेन। उसको बोलते हैं CFIT की, सीफिट, कंट्रोल्ड फ्लाइट इन टू टेरेन। और दूसरे जगहों में भी हुआ है, ऐसे नहीं है, अमेरिकन एयरलाइंस का एक जहाज कोलंबिया के पहाड़ों में, कोलंबिया जो विच इज नोटोरियस फॉर ड्रग्स, उसके जो आई थिंक काली शहर में, क्या क्या काली शहर में जा रहा था, एंड पायलट्स मेड अ मिस्टेक एंड दे फ्लू द प्लेन राइट इन टू अ माउंटेन। सो होता है, ऐसे नहीं है कि नहीं होता, हादसे होते हैं, लोग सीखते हैं, उससे सेफ्टी बढ़ती रहती है। नेपाल में एक और चीज है जी, क्योंकि छोटे हवाई अड्डे हैं ना, तो इसलिए वो हवाई जहाज जो जाते हैं वहां बहुत छोटे होते हैं, और उनमें सबसे मतलब उनमें इतना टेक्नोलॉजी कभी कभी नहीं होता है, लिटिल मोर मैनुअल फ्लाइंग, दे हैव लेस इंस्ट्रूमेंट्स, और रादर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेंसर्स एंड वेरियस वार्निंग सिस्टम्स एंड ऑल, विच आर जो बड़े जहाजों में आराम से बैठ भी जाता है। और क्योंकि बड़े जहाज का खर्चा आप समझ लो $50 मिलियन, मतलब $5 करोड़ का हवाई जहाज है, तो उसमें मैंने एडिशनल जो सेफ्टी सिस्टम्स डालने हैं उसका खर्चा, इट डजंट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्लेन बाय सो मच। पर अगर छोटा प्लेन है, 5 करोड़ के जगह समझ लो आधा करोड़ का हवाई जहाज है या 1 करोड़ का हवाई जहाज है, तो उसमें फिर मैंने ज्यादा इतने इंस्ट्रूमेंट्स डाले तो कभी कभार उसका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता। तो एक तो रीजन है, एक तो टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट है। और अगर आप देखिए तो नेपाल में काफी सारे जो एक्सीडेंट्स हुए हैं वो हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट्स हुए हैं। एक छोटा प्लेन है कॉल्ड ट्विन ऑटर, जो खाली आई थिंक 10-12 लोगों को बिठा सकता है। तो ऐसे ज्यादातर छोटे जहाजों का क्रैश हुआ है। दूसरा चीज ये है कि नेपाल का जो असर, जो कोविड का असर हुआ था नेपाल पे, पर्यटन पे खास करके, बहुत बहुत गहरा असर हुआ। सो नेपाल के काफी एयरलाइंस जो थे उन दे आर इन बैड फाइनेंशियल शेप। सो इवन दिस एयरलाइंस, सॉरी एयरलाइंस, इंडिया का जो कुबेर ग्रुप है, रादर आई थिंक दुबई का कुबेर ग्रुप है, वो मल्लू साहब जिन जिनकी एक्सीडेंट हुई थी, वो रोल्स रॉयस के, वो दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे ऑयल टैंकर में वो कुबेर ग्रुप के मालिक हैं। कुबेर ग्रुप ने 49% स्टेक लिया हुआ था इस एयरलाइन में, पर सुनने में आया कि उन्होंने आगे इन्वेस्टमेंट करने से रोक दिया, क्योंकि उनको रिटर्न्स नहीं मिल रहे थे। और सुनने में आया है कि ये एयरलाइन जो था उस थोड़े से फाइनेंशियल दिक्कत में थी, पायलट्स और सब भी थोड़े अलग जगह नौकरियां ढूंढ रहे थे, वैसे सब चीज, तो मतलब फाइनेंशियली एवरीथिंग वाज नॉट गुड विद द एयरलाइन। सो अब हो सके उन्होंने मेंटेनेंस पे कोई शॉर्टकट लिया है, क्या है वो अभी खाली रिपोर्ट जब आएगा, एक जब पता लगेगा। तीसरा चीज है, एंड दिस आल्सो इज लिटिल रेलेवेंट टू इंडिया, जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है नेपाल की, उनको इंडिपेंडेंट नहीं माना जाता है, वो सुनने में आता है कि गवर्नमेंट के बहुत कंट्रोल में है।
ओके,
यू नो, अगर आप देखें तो ये एलिगेशन इंडिया के डीजीसीए पे भी काफी लगता है कि यू नो डीजीसीए में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हैं, कम टेक्निकल लोग हैं। इट्स नॉट नेसेसरली ट्रू, बट नेपाल का जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है, इट इज नॉट कंसिडर्ड वेरी स्ट्रांग, इट्स नॉट कंसिडर्ड वेरी इंडिपेंडेंट, यू नो, तो कभी कभार चूक हो जाती है। और इसी कारण नेपाल एज अ कंट्री इज बैंड, नेपालीज एयरलाइंस कैन नॉट फ्लाई टू द यूरोपियन यूनियन। तो जैसे अगर आपको याद है, थोड़े साल पहले इंडिया को भी बैन लिस्ट पे डाला गया था थोड़े देर के लिए।
हाँ।
फिर इंडिया ने अपने सिस्टम्स को काफी ठीक किया, यू नो, अंडर प्रेशर अमरीका से भी प्रेशर आया, यूनाइटेड नेशंस का जो बॉडी है आईकेओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां से प्रेशर आया था, यूरोपियन यूनियन का जो रेगुलेटरी बॉडी है ईआसा, वो उन्होंने, तो एफएए, आईकेओ, ईआसा तीनों ने काफी प्रेशर डाला था इंडिया पे, तो काफी परिवर्तन हुए थे इंडिया के रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में, वो पूरा नेपाल में हुआ नहीं है। तो तीनों चीज एक साथ, यू नो, दे उनकी असर पड़ रही है। वेरी श्योर कि नेपाल अब इस दुर्घटना के बाद में, मेरे को लग रहा है कि नेपाल के गवर्नमेंट को थोड़ी सी तो अकल आएगी और वो लोग कुछ करेंगे इसके बारे में। ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं चल सकता इतनी देर।
एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच मिस्टर देवेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर, और हमें गहराई से समझाने के लिए कि आखिर नेपाल में क्यों ऑन एन एवरेज हर साल एक प्लेन क्रैश होता है, और आज जो नेपाल में हादसा हुआ है, वी आर ऑल वेटिंग फॉर द रिपोर्ट कि आखिर क्या हुआ जो प्लेन में मौजूद 17 से 18 लोग अपनी जान गंवा बैठे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।
थैंक यू जी।
This is an ABP Life podcast.